السلام علیکم، یہ پارٹ 26 ہے ناول کال بیل حصہ دوم. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز قمر خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 26. میں نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی گود میں رکھا ہوا ہاتھ تھام لیا اور پھر چونک اٹھا. اس کا ہاتھ بالکل سرد تھا. اس کے چہرے پر غم کے تاثر پھیلا ہوا تھا. آنکھوں میں اداسی بھی تھی. کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے چپکے سے پوچھا. اس نے نفی سے سر ہلایا. اس کے غمزدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی. اس نے میری طرف بڑی وارفتگی سے دیکھا. میں نے مسکرا کر اسے اسی وارفتگی سے جواب دیا. اس کے ہاتھ کو تھپکا اور طیب کی طرف متوجہ ہو گیا جو گوپال کو کسی حسین صورت کی داستان سنا رہا تھا جو بقول اس کے پیدا ہی اسی کے لیے کی گئی تھی، مگر وہ حکارت سے اسے ٹکرا کر چلا آیا تھا. یار بڑے کٹھور ہو، تمہیں عورتوں کے ساتھ اپنے رویے کو بدلنا چاہیے. گوپال ناراض ہو رہا تھا. یار میں اکیلی جان، آخر کس کس کے بارے میں سوچوں گا؟ پھر سب سے اہم بات یہ کہ میری منگیتر ہے. ہماری منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی. وہ میری منتظر ہے. میری خاطر جان دینے کو بھی تیار ہے. اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں اسے بے وفائی کر رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ میں بھی اسے چاہتا ہوں. میں نے اس سے ہزاروں وعدے کیے ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ یہ طیب تھا جو بڑی رعونت سے بتا رہا تھا. منگنی، گوپال نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا. مگر اس دن تو تم کہہ رہے تھے کہ کم از کم منگنی ہی ہو چکی ہوتی تو میں یوں اپنے اندر خلا محسوس نہیں کرتا. وہ تو دوسری منگنی کی بات کر رہا تھا، طیب نے برجستگی سے جواب دیا. میرے بھائی، پہلی منگنی سے پہلے دوسری منگنی کیسے کر سکتے ہو تم؟ میں نے ہنس کر پوچھا. پہلی تو ہو چکی ہے یار، ایک تو تمہارا حافظہ بہت خراب ہے، طیب نے پلٹ کر مجھے گھورتے ہوئے کہا. اچھا ہاں، میں نے زور سے سر ہلایا. میں تو تمہاری ساری منگنیاں بھولے بیٹھا ہوں. ویسے بائی دا وے، پہلی منگنی کب اور کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ ذرا یاد دلائیں گے مجھے؟ میرے انداز پر انیتا ہنس پڑی. وہ غالباً جان گئی تھی کہ طیب گپ مار رہا ہے. کیسی باتیں کرتے ہو تم ضیا؟ بھابھی، طیب نے انیتا کو مخاطب کیا، آپ کی ڈیوٹی ہے یہ کہ آپ نہار منہ ضیا کو بادام کی گری کھلایا کریں گی اور چاروں مغز بھی، اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. مگر حافظہ تیز ہونے کی صورت میں مجھے تمہاری منگنیاں ہزاروں کی صورت میں یاد آ جائیں گی. نہیں، اس سے حافظہ درست بھی ہوتا ہے. وہ جھلا گیا. پہلی ہی یاد آ جائے تو بڑی بات سمجھو. تم نے خود تو کرائی تھی. میں نے؟ ہاں اور کیا، فرحت سے. ارے پہلی بار جو ہم دہلی گئے تھے تب؟ ارے ہاں، میں تو بھول گیا. اس دن تو تم پھسل کر گر پڑے تھے. تمہارے سر پر چوٹ آئی تھی اور تمہاری یادداشت بھی متاثر ہوئی تھی. خیر تم چھوڑو، طیب گھبرا گھبرا کر کہہ رہا تھا اور گوپال ہنس رہا تھا. مگر میں ساکت رہ گیا تھا. مجھے فرحت کے ذکر پر جانے کیا ہو گیا تھا، دکھ کا گہرا احساس ہوا تھا. یہ یاد آ گیا تھا کہ طیب فرحت کو پسند کرتا ہے اور اب اس کی طرف جانے والے تمام راستے کھلے ہوئے تھے. اب مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا تھا کہ میں اسے فرحت کے بارے میں سوچنے سے منع کر دوں. میں خاموش ہو گیا تھا. میری خاموشی کو انیتا نے محسوس کر لیا تھا، اس لیے کہ اس نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، پھر ہنس کر منہ کھڑکی کی طرف کر لیا. مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میری سوچ کا مذاق اڑایا ہو، مجھے احساس دلایا ہو کہ میں جو کچھ چاہتا تھا حاصل نہیں کر سکا. और वो जो कुछ चाहती थी इसे हासिल हो गया है और अब मेरी ये सोचें इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा दिल बोझल हो गया, वो जो जरा मूड बहाल हुआ था चौपट हो गया। जिन सवालों के गिरदाब से मुश्किल से निकला था इसमें फिर जा फंसा। फरहत का चेहरा रह रहकर निगाहों में घूमने लगा। उस लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अनीता को लेकर दिल्ली नहीं जाऊंगा, तैयब जाकर बता देगा। इससे सबका रद्दअमल मालूम होने के बाद कोई फैसला करूंगा। बी जानकर रद्दअमल जैसे मुझे मालूम था, वो फरहत को लेकर मेरठ चली जाती, फिर घर के दूसरे अपराध का सामना करना इतना मुश्किल ना रहता और कोई जरूरी भी नहीं था कि मैं फरहत का सामना जरूर ही करता। कितने ही लोग बेवफाई करते हैं, जानबूझकर दिल तोड़ते हैं। मैंने इससे बराह रास्त कोई वादा भी नहीं किया था, मबहम सी बात थी और बस। कभी इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे अपनाने का दावा नहीं किया था। फिर मैं क्यों इस कदर परेशान हूँ, मेरी मजबूरी से तो मुन्ने दादा भी वाकिफ हैं और बीजान भी, शाली बाबा भी और अम्मा भी, और फिर तैयब जो जानता है कि मैंने शादी किस तरह की। ये बड़बोला वहाँ जाकर एक एक तफसील बताएगा, सब सुनेंगे, फरहत को भी पता चल जाएगा। फिर अचानक गाड़ी झटके से रुकी। ये एक बड़ा होटल था जो रोशनियों से जगमगा रहा था। चलो उतरो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, गोपाल ने कहा। हम सब उतर गए। रोशनियों के इस तूफान में मेरी निगाह अनीता के चेहरे से होती हुई इस किसी खूबसूरत साड़ी पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इधर उधर खड़े लोगों के साथ खड़ी औरतें चौंक चौंक कर अनीता को देख रही थीं। मुझे अच्छा लगा। इसकी साड़ी सियाह साड़ी पर छोटे छोटे से सुनहरी धब्बे से बने हुए थे जो बहुत कम थे मगर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं अभी इसके सरापा का पूरा जायजा भी नहीं ले पाया था कि गोपाल और तैयब भी हमारे करीब आ गए। हम डाइनिंग हॉल की तरफ मुड़ गए। अनीता की चाल में बड़ी तमकनत थी। वो मुझे इस वक्त बिल्कुल अजनबी सी लग रही थी। अनीता होने के बावजूद अनीता नहीं लग रही थी। पूर्वकार चाल, चेहरे पर संजीदगी, पतली लंबी गर्दन में झिलमिलाती बारीक सुनहरी चेन, भरे हुए बाजुओं में ब्लाउज की फंसी हुई आस्तीन, ऊंचे एड़ी की सिया सैंडल, कटे हुए बालों को जुड़े की शक्ल में बनाया हुआ था जो इसके वक्कार में इजाफा कर रहा था। मुझे हैरत हुई। इस वक्त वो इतनी ही खूबसूरत लग रही थी कि मुझे इस अचानक शादी और अफरा तफरी में किए गए बंधन पर खुशी हुई। यार नजर न लगे, तुम दोनों की जोड़ी पूरे होटल में चमक रही है, गोपाल ने सरगोशी की। वैसे यार ये मुझे वो अनीता तो लग ही नहीं रही जिसे मैं 6 बरस से जानता हूँ। अच्छा है जिया अपनी बीवी के साथ किसी और की बेतकल्लुफी बर्दाश्त करने का आदि नहीं है, तैयब ने मुंह बनाकर कहा। आदि? गोपाल रुक गया। यानी तुम्हारा मतलब है कि वो शादी का यानी बीवी का आदि है और बीवी से बेतकल्लुफी का आदि नहीं, यानी वो पहले भी शादीशुदा है, यानी बस करो यार, तैयब झंझला गया। तुम्हारी इस यानी ने मेरा नाक में दम कर दिया है। मतलब सिर्फ ये है कि यानी समझो ये वो अनीता नहीं, कोई और अनीता है। मैं और अनीता हंसते रहे। हमने बड़े खुशगवार मूड में खाना खाया, हंसी मजाक होता रहा। दरमियान में अजीब बात हुई, अनीता वॉशरूम जाने के लिए उठी चली गई। जब वो वापस आ रही थी तो मेरी निगाह इसकी तरफ उठ गई। वो मुझसे कोई 20 कदम दूर थी मगर रोशनियों ने इसके गिर्द हाला सा बना रखा था। इन रोशनियों के दरमियान अचानक मेरी निगाह इन सुनहरे धब्बों पर गई। मैं उछल पड़ा, चीखा, अनीता। मेरी चीख सुनकर सब उछल पड़े। अनीता जहाँ थी वहीं साख्त हो गई। गोपाल और तैयब क्या हुआ क्या हुआ, चीखने लगे। मगर मैं तीर की तरह अनीता के करीब पहुँच गया और वहीं घुटनों के बल जमीन पर बैठकर इसकी साड़ी को जोर जोर से झाड़ने लगा, साथ ही चीख रहा था, हिरना नहीं अनीता, हिरना नहीं। तमाम लोग जो लम्हा भर को साक्त रह गए थे मेरी तरफ लपकने लगे, सब हैरान थे, मुझसे मेरे चीखने की वजह पूछ रहे थे, मगर मैं पागलों की तरह अनीता की साड़ी झाड़ रहा था और चीख रहा था। अनीता ने बड़ी मजबूती से अपनी साड़ी पकड़ रखी थी और मुझसे बार बार कह रही थी, जिया प्लीज ये क्या कर रहे हो, मत करो, क्या कर रहे हो। अचानक मुझे पीछे से कुछ लोगों ने पकड़ लिया, तैयब मेरे सामने आ गया, क्या है जिया ये क्या कर रहे हो तुम। इसकी आवाज से मुझे होश आ गया, सब लोग मेरे गिर्द खड़े थे, अनीता का चेहरा सुर्ख हो रहा था, गोपाल और तैयब के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, ये अनीता के बदन पर, साड़ी पर वो सुनहरी मकड़ियां। मुझसे बोला नहीं गया, मैंने फिर इसकी साड़ी पर पड़े धब्बों पर निगाह जमा दी, कुछ नहीं है ये पेंट है देखो। तैयब ने चुटकी से एक धब्बा पकड़ कर मसला, वाकई वहाँ मकड़ी नहीं थी, जबकि मैंने इन्हें बाकायदा रेंगते देखा था, वरना मेरी निगाह तो अनीता के चेहरे पर थी, हरकत के एहसास ने ही मेरी निगाह का जाविया बदला था। मैंने साड़ी को देखा तो वहाँ छोटी छोटी सुनहरी मकड़ियाँ रेंग रही थीं, और ये बिल्कुल सच है, और ये भी सच था कि तैयब चुटकी में पकड़े धब्बे को दिखा रहा था, वो पेंट ही था, सुनहरा पेंट। चारों तरफ खड़े लोगों की समझ में कुछ नहीं आया था। होटल का मैनेजर गोपाल से सूरत हाल के बारे में पूछ रहा था। अनीता बेहद शर्मिंदा सर झुकाए खड़ी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे इसे गुस्सा हो मेरी हरकत पर। तैयब मुझे सहारा देकर खड़ा कर चुका था। लोग जो जमा हो गए थे चे मगोइयां करते अपनी अपनी टेबल पर जा रहे थे। गोपाल मैनेजर से माजत कर रहा था। तैयब मुझे लिए अपनी टेबल पर चला आया, फिर मुझे बैठने को कहकर इसने गिलास में पानी उंडेल कर मुझे दिया और खुद गोपाल की तरफ बढ़ गया। अनीता मेरे सामने बैठ चुकी थी और मुझे गौर से देख रही थी। अचानक मुझे इसकी आंखों में तमस्कर दिखाई दिया, फिर गहरी संजीदगी। इसने जरा सा आगे को सिरक कर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिया अब तुम्हें ऐसी बातों का आदी हो जाना चाहिए, तमाशा बनने से बेहतर है कि आदमी खुद पर झेल ले। मैं चौंक उठा, वो क्या जानती है, क्या कह रही है, क्यों कह रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता गोपाल और तैयब आ गए। चलो यार खाना तो खा ही चुके हैं, यहाँ सब घूर घूर कर देख रहे हैं, कहीं और चलते हैं, गोपाल ने कहा और गाड़ी की चाबी उठा ली। गालबन वो बिल पे कर आया था, वाकई हमें सब अजीब सी निगाहों से घूर रहे थे। खास तौर पर सबकी निगाह मुझ पर और अनीता पर थी। हम उठ गए, गाड़ी में बैठे तो अनीता का मूड काफी खराब लग रहा था और मैं अभी तक इस उलझन में था कि अनीता ने मुझे किन बातों का आदी हो जाने की तलकीन की है। तैयब और गोपाल भी खामोश थे। होटल में होने वाला वाकया यकीनन तमाशा बन गया था, मगर ये अब भी यकीन था कि मुझे धोखा नहीं हुआ है। मैं तैयब को भी ये यकीन दिलाना चाहता था, मगर ये मौका नहीं था। इस तरह गोपाल और अनीता मुझे यकीनन पागल समझने लगते। मैं तो बार बार खुद को बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि मुझे धोखा हुआ होगा। तैयब ही ठीक कह रहा है, मगर नहीं, मुझे यकीन था कि मैं धोखा नहीं खा सकता। ये ख्याल आते ही मैंने फिर अनीता पर निगाह डाली जो खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर मैंने इसकी सिया साड़ी पर निगाह की, वहाँ वही धब्बे से पड़े थे। मैंने इसकी निगाह बचाकर एक धब्बे को उंगली से महसूस किया और फिर मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। मैं उछला तो नहीं, साख्त हो गया। मेरी उंगली के नीचे कोई लजी सी चीज थी जो जिंदा थी और सांस ले रही थी। ये अच्छा ही हुआ कि मैं उछला नहीं, वरना फिर तमाशा बनता। कम अज कम अनीता गोपाल की निगाह में जरूर तमाशा बन जाता, मगर अब अकेले इस बात को हजम करना भी ऐसा आसान नहीं था। मैंने धब्बे पर उंगली जमा दी और पूरी कुवत से इस चीज को मसल दिया। उंगली पर गीले गीले किसी सयाल का एहसास भी हुआ। मैंने उंगली सीट से रगड़ कर खुश कर ली और अपनी सर्द होती रीढ़ की हड्डी को सीट की पुश्त से टेक दिया। खिड़की से बाहर देखा, गाड़ी समंदर से चंद गज दूर चौड़ी सड़क पर फिसल रही थी। मेरा जी चाहा मैं गाड़ी रुकवा कर भाग जाऊं। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अनीता की साड़ी की तरफ देखूं। यहाँ रोक दो, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। गोपाल ने आईने में मुझे देखा और फिर पलट कर बोला, क्या बात है जिया, तुम्हारा रंग क्यों सफेद हो रहा है? ये कहते कहते इसने गाड़ी साइड में करके रोक दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गाड़ी रुकते ही मैं बाहर आ गया, तैयब भी लपक कर उतर गया और मेरी तरफ आया। क्या बात है जिया, इसने शायद महसूस कर लिया था कि कोई गड़बड़ है। वो मेरी आंखों में देख रहा था। तैयब कुछ है, किसी तरह इन दोनों से कुछ फासले पर चलो। मैंने सरगोशी की और यूं एक तरफ को बढ़ गया जिसे मुझे उपकाई आ रही हो। अनीता भी घबरा कर गाड़ी से उतर रही थी। तैयब ने उसे दोबारा बिठा दिया। क्या हो गया है जिया को, वो बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी। आप परेशान ना हो, शायद वॉमिटिंग हो रही है, कुछ ठंडी हवा लगेगी तो ठीक हो जाएगा, आप बैठें। इसने जबरदस्ती अनीता को गाड़ी में बिठा दिया। गोपाल को वो अनीता की वजह से बिठा आया। मैं अब इन लोगों से तकरीबन 15-20 कदम दूर समंदर की तरफ मुंह किए खड़ा था। यहाँ लगे पोल से काफी रोशनी दूर तक फैल रही थी। तैयब मेरे करीब आ गया। मैंने इसे तफसील बताई। पहले तो वो संजीदा नहीं हुआ। मेरे बताए हुए वाक्य को दिमाग का खलल साबित करने की कोशिश करता रहा, मगर जब मैंने इसरार किया, अपनी उंगली इसके सामने की और बताया कि अभी अभी मैंने इसे अपनी उंगली से मसला है, तब मेरी निगाह तैयब के चेहरे पर पड़ी। इसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरे पर अचानक खौफ फैल गया था। वो मेरी उंगली को देख रहा था। मैंने चौंक कर अपनी उंगली देखी और फिर मेरे मुंह से अजीब सी आवाज निकली। मेरी उंगली की पहली पोर सुनहरी हो रही थी। ये देखो, वो अगर पैंट था तो गीला तो नहीं था ना? फिर ये जिया, वैसे ये हो तो सकता है ना कि तुम्हारे रगड़ने से पैंट ही फैला हो, वो वाकई गीला हो या बिल्कुल सूखा कि रंग तुम्हारी उंगली पर लग गया हो। तैयब मेरे साथ साथ गालवन खुद को भी तसल्ली दे रहा था, यकीन दिला रहा था। पता नहीं, लेकिन तैयब वो जिंदा थी, कोई नरम सी चीज। तुम यकीन क्यों नहीं करते हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं हो तुम। आज पहली बार ये सब सुन रहे हो। मैं झल्ला गया। जिया, मुझे तो सच्ची बात है, अब खौफ आने लगा है यार। अक्का बागिया ने तो कहा था कि शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, अब ये क्या चक्कर चल पड़ा? फ्रॉड था तुम्हारा वो अक्का बागिया, मुझे तो ये इसकी चाल लगती है। नहीं यार, ऐसा मत कहो, इसका क्या पता, अभी समंदर से निकल आए। चलो घर चलो, इसने आने को कहा था ना, इससे बात करेंगे। मुझे भी याद आ गया कि इसे आना था। मैं तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गोपाल और अनीता परेशान थे, मगर मैंने मुस्कुराकर इन्हें तसल्ली दी और हम घर की तरफ रवाना हो गए। आप ठीक नहीं हैं क्या, अनीता ने बड़ी देर के बाद पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा। फिर वो होटल में वो सब क्या था? बताऊंगा अनीता, दरअसल मेरे साथ एक मसला है। तुमने तो वक्त ही नहीं दिया कि कुछ बताता, मगर ऐसी परेशानी की बात नहीं है, तुम मुतमईन रहो। मुझे वक्ती तौर पर इसे मुतमईन करना था, सो कर दिया। अब ये सोचने को बड़ा वक्त पड़ा था कि इसे क्या बताऊंगा। फिलहाल तो जहन अक्का आ गया इन सुनहरी मकड़ियों और मौजूदा हालत में शादी पर चकराया हुआ था। गोपाल ने गाड़ी गेट पर रोकी, हम लोग उतरे। अनिता ने गोपाल से चाय पीने को कहा, मगर इसने इनकार कर दिया, कहा कि इसे एक जरूरी काम है और वो कल जरूर शाम की चाय हमारे साथ पिएगा। और अच्छा ही हुआ कि वो गेट से ही चला गया, वरना जाने क्या होता। हमने जो ही बाहर वाला दरवाजा खोला, मैं और तैयब ही नहीं, अनिता भी चीख उठी। दरवाजा खोलते ही जो कुछ दिखाई दिया वो सबको खौफजदा कर देने को काफी था। इस कमरे में मदहम सा बल्ब जल रहा था जो तैयब जला छोड़कर गया था। हमारे सामने गोश्त के टुकड़े पड़े थे। मुझे एल्सिया वाली कोठी याद आ गई, यही सब कुछ हमारे साथ वहाँ भी हो चुका था। मैंने सबसे पहले अनिता को पीछे किया ताकि वो इस खौफनाक मंजर को न देख सके। गोवर गोश्त के टुकड़ों को खून में लथपथ देख चुकी थी और अब दीवार थामे दूसरी तरफ मुंह करके गहरे सांस ले रही थी। तैयब एक नमे को तो वहीं ठटक गया था। फिर जब मैं अनिता को बाहर रहने की तरकीन करके अंदर की जाने बढ़ा तो तैयब ने भी कदम बढ़ा दिए। मुझे रियाज की फिक्र थी और तो कोई यहाँ ना था, न किसी के आने का इम्कान था। मैं और तैयब तेजी से आगे बढ़े। गोश्त के टुकड़े ज्यादा नहीं थे। फिर सोफे के पीछे मुझे मरे हुए कुत्ते का सर नजर आया जिसने मेरे खदशात को मुस्तद कराया। ओ अनीता, फिक्र ना करो, कुत्ता है, शायद भेड़िया उठा लाया होगा और उसे यहाँ खाने की कोशिश कर रहा होगा, पता नहीं। ये बात मैंने अनीता की तसल्ली को कही थी, ये अपनी तसल्ली को। मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था और शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि ये घर जंगल में नहीं कि भेड़िया किसी मुर्दा कुत्ते को उठा लाए। और फिर दरवाजा भी लॉक था, खिड़कियां बंद थी और जमीन से काफी ऊंची भी थी। पिछली तरफ से ऐसा कोई रास्ता भी नहीं था जहाँ से किसी के अंदर दाखिल होने का इम्कान हो। अनिता बहरहाल संभल गई, तैयब ने भी इत्मीनान का सांस लिया, मगर मैंने पूरे घर का जायजा लेना जरूरी समझा। बाकी सब खैरियत थी। तैयब ने गोश्त के वो टुकड़े झाड़ू की मदद से उठाकर डस्टबिन में डाल दिए, फिर वो डस्टबिन भी घर से बाहर रख दिया। जरा देर बाद ही कमरा साफ हो चुका था। मैंने एयर फ्रेशनर का स्प्रे भी कर दिया। अनिता अब भी खौफजदा थी और बार बार चारों तरफ देखकर पूछ रही थी कि आखिर ये मुर्दा कुत्ता आया कहाँ से। ये सवाल मेरे दिमाग में भी हलचल मचाए हुए था। मुझे कोई यकीन दिला रहा था कि ये ज्यूसा की तरफ से धमकी है, मगर मैं कर भी कह सकता था। हाँ, अक्का बागिया का जरूर मुंतजर था कि इसके बकौल इस शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाना था, जो मेरे लिहाज से कतई ठीक नहीं हुआ था। होटल में होने वाले वाक्य ने पहले ही हम सबका मूड चौपट कर दिया था। मैं तो खौफजदा ही था, इस पर इस इफ्तदार ने और फिक्रमंद कर दिया था। मैंने और तैयब ने किसी न किसी तरह अनिता को मुतमिन कर दिया था। अब वो कदरे नॉर्मल थी। हमें आए अभी घंटा भर भी नहीं हुआ था कि अचानक बे आवाज दरवाजा खोल कर अक्का बागिया हमारे सामने आ गया। ओ अक्का बागिया, हम आपका इंतजार कर रहे थे। इसे देखकर तैयब की बांछें खुल थीं। अनिता ने इसे हैरत से देखा जिसे पहली बार देख रही हो। फिर इससे पहले कि वो बैठता, अनिता ये कहकर अपने कमरे में चली गई कि इसे शदीद नींद आ रही है। अक्का बागिया इसकी बात पर बड़े मायने खेज अंदाज में मुस्कुराया था। शायद तैयब ने इसे मुस्कुराते ना देखा हो, मगर मेरी निगाह इसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वो फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गया। अरे क्या कर रहे हैं आप, तैयब बौखला गया, यहाँ ऊपर सोफे पर बैठे। ऊंची जगह पर बैठने से आदमी का किरदार ऊंचा नहीं हो जाता अहमक, इसने बेनियाजी से कहा। तैयब और मैं इसके करीब कालीन पर बैठ गए। नींद से प्यार करने वाले बेवकूफ होते हैं, जिंदगी के लाखों घंटे सोने में जाया कर देते हैं। ये जिंदगी जाया करने के लिए नहीं दी गई, इसका एहसास नहीं है किसी को, इसने साफ तौर पर अनीता पर तंज किया था। मैं तो इससे दूसरी ही बातें करना चाहता था और वो बातें ऐसी नहीं थी कि अनीता के सामने की जाती। शायद इसलिए मुझे इसकी ये काम की बात भी फजूल लगी। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता था। बहुत सी बातें थीं जो मुझे परेशान कर रही थी और बिलखुसूस मेरे सिलसिले में इतना बड़ा फैसला करने के बाद मैं इन सब बातों का हल चाहता था। इसलिए मैंने दूसरी कोई बात किए बगैर होटल में होने वाला और फिर घर आकर कुत्ते वाला वाकया कह सुनाया, जिसे वो खामोशी से सुनता रहा। तैयब ने इस दौरान में कतई मदाखलत नहीं की, मगर अब मैं खामोश हुआ तो तैयब बोल उठा। अक्का भागिया, अनीता से शादी इसी शर्त पर की गई थी कि अब किसी किस्म का चक्कर ना चले। आपने यकीन दिलाया था? हाँ, हमने यकीन दिलाया था। इसने सर उठाकर मेरी आंखों में आंखें डाल दी। मगर तो जाकर तू जाकर अपने जद को रोक, वो बेवकूफियां कर रहा है। जद? तैयब हैरान हुआ। मुन्ने दादा, मेरे मुंह से सरगोशी निकली, क्या कर रहे होंगे वो? वो अतसला के हाथों में खिलौना बन गया है। फ्रॉड से वो औरत सब कुछ हथिया लेना चाहती है। वो जीजा पर काबू पाना चाहती है, एलन को बेबस कर देना चाहती है। और सुन, इसने झटके से सर उठाकर मुझे देखा। इसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। ये शाली के बस का काम भी नहीं है। तुझसे कहा है ना कि अब सब कुछ बदल जाएगा, तो बस बदल जाएगा। मैं तुझे मुबारकबाद देने आया था। जा जाकर अपने घर के मर्दों को रोक दे, कह दे राख में हाथ डालने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि कहीं चिंगारी भी हो सकती है। ज्यूसा खामोश है, वो तेरी पूजा करती है। मुझे ज्यूसा से कोई दिलचस्पी नहीं अक्का बागिया, मैंने इसकी बात काट कर कहा। ना मुझे इसकी परस्तिश की जरूरत है, मैं अपनी सीधी सादी जिंदगी में लौट जाना चाहता हूँ। अनीता से शादी पर मैं राजी नहीं था, ये बात आप जानते होंगे। इस मामले में मुझ पर आपने अपनी मर्जी मसल्लत की है, इसलिए आप ही अब किसी भी पुरसार वाकये के जिम्मेदार होंगे। मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं। इसने मेरे अंदाज और मेरे लहजे पर मुझे गौर घूर कर देखा। अंदाजा? किसे कहते हैं अंदाजा? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इसकी हंसी हजियानी थी। मैं और तैयब दोनों ये समझे कि अक्का बागिया पागल है या हो गया है। तैयब तो फौरन ठंडे पानी का गिलास भर लाया, जिसे इसने सर के इशारे से पीने से इनकार कर दिया और वैसे ही हंसता रहा। मुझे गुस्सा आ गया। जी चाह के इसके बालों की लटें पकड़कर इतनी जोर से घुमाऊं कि खोपड़ी दीवार से टकराकर चीख जाए। अजीब सी फिजा हो गई थी। तैयब सख्त परेशान था। वो शायद समझ रहा था कि मेरी खोपड़ी पलट चुकी है। बहुत कंफ्यूज था। मैंने इसे ऐसे घूर कर देखा जैसे इस सिचुएशन का सबब वही है। इसने दोनों हाथ जोड़ दिए। अक्का बागिया की नजर बचाकर मुझे खामोश रहने का इशारा भी किया। मैं उठ खड़ा हुआ, टहलने लगा। अचानक अक्का बागिया खामोश हो गया। इसके पूरे घर में गूंजते कह कहे थमे तो जैसे एकदम सन्नाटा तारी हो गया। मैंने चौंक कर देखा, वो सर झुकाए सख्त बैठा था। मैं इसके करीब आ गया। सब ठीक हो गया है, वो अचानक बोला। इस बार वो संजीदा था। इसकी आंखों की सुर्खी मातूम हो चुकी थी। यूं महसूस हुआ जैसे अब से पहले इसकी जगह कोई और था। अक्का बागिया, जियूसा से जिया की जान छूट गई क्या? ये तैयब था। جو اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ یہ ناول کال بیل حصہ دوم کا بقیہ حصہ پارٹ 27 میں سماعت فرمائیں۔